ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है वीरता, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
भारतीय सेना की वीरता, बलिदान और पराक्रम की गाथा का साल 1999 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इस साल भारतीय सेना ने अपने पराक्रम के बल पर पाकिस्तानी घुसपैठ को नाकाम करते हुए भारत की विजय गाथा में, भारत की विजय श्रृंखला में एक और पड़ाव को शामिल किया और इस वीरता और बलिदान ने ये साबित कर दिया कि सशक्त भारत और एक ऐसा भारत जो सुदृढ़ है वो हमेशा हर चुनौती और हर किसी शत्रु की निगाह के आगे वो तैनात खड़ा है। चूंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, कारगिल विजय दिवस को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और कल हम कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर कारगिल पहुंचेंगे और हम कल के इस दिन के अवसर पर उन शहीदों की वीरता को नमन करते हैं जिन्होंने भारत को विजय दिलवाई, साथ ही उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं जिन्होंने इस महान विजय में अपना बलिदान दिया। तो आज इस विजय दिवस के अवसर पर हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।
जय हिंद सर। सबसे पहले अगर हम समझना चाहें, स्मृतियों में जाना चाहें कारगिल युद्ध की, आप कैसे हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि किस तरह से भारत ने घुसपैठ को नाकाम किया और इस युद्ध में विजय प्राप्त की?
सबसे पहले तो सभी भारतीयों को रजत जयंती और विजय कारगिल दिवस की शुभकामनाएं। और जैसे इसका महत्व हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद वॉर मेमोरियल पे जा रहे हैं, कारगिल वॉर मेमोरियल पे श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये बहुत एक तरीके से मैं कहूंगा फॉल्स नैरेटिव हम लोगों ने सब जगह फैलाया। ये जो कारगिल युद्ध था इसमें काफी कोई लोग जो थे वो आतंकी थे और मिलिटेंट थे और उन्होंने ये शुरू किया। मैं कह सकता हूं आज ये सारा षड्यंत्र रचा गया और उसके महाखलनायक जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने मिलिटेंट के नाम पे अपने रेगुलर्स को भेजा और ये पूरा षड्यंत्र उन्होंने रचा। और क्यों रचा? क्योंकि उन्होंने देखा कि भारतीय फौज ने सियाचिन में सोल्तोरो रिच को ऑक्यूपाई कर लिया था 1984 में जब वो एक कर्नल थे और जियाउल हक ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ कि भारतीय सेना ने हमको प्रीएम्प्ट कर लिया और पूरा सियाचिन ग्लेशियर चला गया, जो उनको लगता था वो उनका है, जबकि वो पूरा गलत। कराची एग्रीमेंट में साफ शब्दों में लिखा गया है कि ये जो अपना सीज फायर लाइन है ये NJ 984 10 नॉर्थवर्स जाता है। पाकिस्तान ने उसको चुपचाप काराकरम पास तक जोड़ करके सियाचिन ग्लेशियर अपने इसमें हड़पने की कोशिश की कार्टोग्राफिक ग्लेशियर के द्वारा। अब जब वो वहां पे नाकाम पूरा असफल हुए सियाचिन ग्लेशियर पे, तो मुशर्रफ ने फिर सोचा कि अगर भारतीय सेना इस तरीके से हाइट्स को पकड़ लेती है और वो खुद हमले में शामिल थे और बार बार हमले करने के बावजूद बिल्कुल उनको ढकेला गया, वहां से खदेड़ दिया गया, उन्होंने सोचा मैं कारगिल करता हूँ, कारगिल की हाइट्स पकड़ता हूँ। भारतीय सेना के साथ एक समझौता था कि विंटर वेकेटेड पोस्ट कहते थे, हम पीछे आते थे वो भी पीछे जाते थे, लेकिन उन्होंने पीछे पीछे छुरा घोपा, इन हाइट्स को पकड़ा, जबकि ये अनऑक्यूपाइड हाइट थी। भारतीय इसमें LC को पार किया, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक अंदर आए और अपने लोगों को बिठा दिया। और जब विंटर खत्म हुआ सबको बोला गया कि ये तो मिलिटेंट है और ये तो मेरे आदमी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ के हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर। सारे के सारे पाकिस्तान के फौजी थे, उन्होंने ये पूरा रचा, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि भारतीय फौज इन हाइट के ऊपर वो नहीं कर सके, तो भारतीय फौज ने करके दिखाया और उनको खदेड़ा। और ऐसा खदेड़ा कि मुशर्रफ ने अपने ही जवानों के शव लेने से इनकार कर दिया, कहा ये मेरे नहीं है, जबकि हमने उनको दिखाया। आपको आश्चर्य होगा कि 10 साल के बाद उन्होंने टाइगर हिल में जिस कप्तान को उन्होंने निशाने हैदर दिया, उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके उसकी जेब में डाली थी कि ये जो आपका कप्तान है ये बहादुरी से लड़ा, इसकी देखभाल करना। और 10 साल के बाद पाकिस्तान की सेना ने जिस टाइगर हिल के ऊपर अपने योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र मिला, उसी जगह पर वहीं पे रूस का कैप्टन कर्नल शेर खान को पाकिस्तान ने 10 साल के बाद निशाने हैदर दिया। माना ये युद्ध जो है पाकिस्तान के रेगुलर फोर्सेज ने किया, न कि मिलिटेंट और आतंकियों के कवर के नीचे कोशिश कर रहे थे। और एक तरफ उसी वक्त एक मिनट तो आपसे 1999 में फरवरी में वहां पे अपने ही प्रधानमंत्री ये सोच करके कि अपना पड़ोसी है, वो बार बार कहते थे कि पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता, पड़ोसी है उनके साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, और खुद गए बस लेकर के अच्छे रिश्ते बनाने के लिए नवाज शरीफ के पास। और क्या हुआ, फरवरी 99 में ये और मई 99 में उन्होंने कारगिल युद्ध किया। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता।
ऑपरेशन विजय और भारतीय वायुसेना का दृढ़ता के साथ इस्तेमाल, इस भारतीय विजय की एक बहुत बड़े हम कह सकते हैं कि इस युद्ध के फीचर्स रहे हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से भारतीय सेना ने दृढ़ता के साथ इस युद्ध को लड़ा और कैसे ऑपरेशन विजय जैसे जो अभियान थे या वायुसेना का इस्तेमाल था उसने अपने पराक्रम से इस घुसपैठ को नाकाम किया?
इन ऊंची पहाड़ियों पे अगर कोई बैठ जाता है एंड कहते हैं माउंटेन्स ईट ग्रुप्स एंड वंस यू ऑक्यूपाई डोमिनेटिंग हाइट्स डिसलॉज करना नामुमकिन के बराबर होता है। तो भारतीय सेना ने दिखलाया, पैदल सेना ने दिखाया जिस तरीके से टोलोरिंग फीचर कैप्चर किया, जिस प्रकार से टाइगर हिल कैप्चर किया, जिस प्रकार से अपना 0.4875 कैप्चर किया, 0.5140 कलुआ में लड़ाई लड़े, ये सब इस कामयाबी का श्रेय बहुत हद तक है। तो पैदल सेना ने हमला कर सके, ऊंचाइयों के ऊपर खदेड़ सके और लड़ सके, चाहे हमारे कितने भी सैनिक मारे गए, लेकिन इसका काफी कुछ श्रेय जाता है इंडियन आर्टिलरी को और एयरफोर्स को। एयरफोर्स ने जिस प्रकार से बम बरसाए इन हाइट के ऊपर, जिस प्रकार से 100-100 गन्स पूरे विश्व भर में और 100-100 गन्स लगातार कंटिन्यूस डायरेक्ट फायरिंग रोल के ऊपर इन पूरे पहाड़ियों के ऊपर फायर करे और उस फायरिंग के नीचे ये अपने पैदल सेना जाकर के पाकिस्तानी सेनाओं को मारा खदेड़ा और वहीं पर उनको पीछे भगाया। सब कुछ हो सका क्योंकि एयरफोर्स और आर्टिलरी दोनों ने मिलकर के जिस तरीके से बम बरसाए, आपको आश्चर्य होगा अगर मैं बताऊं 290,000 शेल बरसाए आर्टिलरी ने, सिर्फ 290,000 उन सिर्फ 50 दिनों के अंदर। आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त फायरिंग आर्टिलरी और एयरफोर्स ने किया, अब पैदल सेना जो है जाकर के हमला कर सकी, नहीं तो फ्रंटल अटैक और ऊंचाई के ऊपर हमला सर्दियों में पहाड़ियों पे बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर नामुमकिन के बराबर था। ये नामुमकिन मुमकिन कर दिखलाया क्योंकि आर्टिलरी ने, एयरफोर्स ने पैदल सैनिकों की मदद की, इन्फेंट्री की मदद की और ये हमको फायदा हुआ और आज हम रजत जयंती मना रहे हैं और कारगिल दिवस।
जब हम भारत की सोवरेनिटी संप्रभुता की बात करते हैं, भारत की सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हम सुरक्षित तभी हैं जब हमारी सेनाएं नभ में, जल में और जमीन पर हमारे लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। तो हम कारगिल युद्ध की ही दृष्टि से आपसे समझना चाहेंगे, सेना के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा और कोई भी चुनौती हो, हमेशा भारतीय सेना ने कर दिखाया है कि उस चुनौती को पार कर हमें सुरक्षा प्रदान की है, तो कितनी चुनौतियां रही होंगी, कैसा पूरा ये युद्ध रहा, आप इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
जिसके बारे में हम आजकल इतनी बात करते हैं, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, मैंने आपको कहा 290,000 शेल फायर किए और हम लोगों को उस वक्त इम्पोर्ट करने पड़े क्योंकि हमारे को पूरी काबिलियत नहीं थी उस वक्त इतने शॉर्ट समय में सर्च कैपेसिटी में हिंदुस्तान के अंदर बनाने के लिए। बात तो तब हुई, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तब एहसास हुआ, लेकिन एहसास हुआ पर उस एहसास को हम धीरे धीरे करके अब हम देखते हैं कि उस रास्ते पर हैं, हम आत्मनिर्भरता पे, सेल्फ रिलायंस पे, इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा हुआ क्योंकि कारगिल कमेटी बैठी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठे, सुब्रमण्यम कमेटी थी, उन्होंने देखा जो सीडीएस उस वक्त रेकमेंड हुआ, अब जाकर के सीडीएस बने, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से एडवाइजर, सिंगल पॉइंट एडवाइजर सरकार को, ऐसे जैसे आपने कहा कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सबका थिएटराइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, सबका मेल मिलाप अच्छा रहना, ये इसके लिए सीडीएस की बहुत जरूरत थी, वो सीडीएस बना। आत्मनिर्भरता के लिए मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया, यकीनन देखा गया कि बूट्स ऑन ग्राउंड भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और उस टेक्नोलॉजी, अब उसके वही कारण है हम देखते हैं ड्रोन आ गए, यूएवी आ गए, आर्टिलरी फायर, तरह तरह के गन्स आ गए, मिनिमाइजेशन हो गया, अब आप देख रहे हैं जोरावर लाइट टैंक आ रहा है मिसाइल्स के ऊपर, हम लोगों ने क्रूज मिसाइल्स के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, धीरे धीरे करके सबके ऊपर। ये यकीनन बहुत जरूरी है, अगर भारत बनेगा पूरे विश्व भर में तीसरी बड़ी आर्थिक स्थिति, उस आर्थिक स्थिति के लिए निहायत जरूरी है, जैसे आपने कहा, सक्षम भारत, सुदृढ़ भारत और सुरक्षित भारत। ये भारत सुरक्षित होगा तभी आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होगी, नहीं तो हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं इसराइल और हमास में क्या हो रहा है, पूरे विश्व भर में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी जो हैं किस प्रकार से चीन एक्सपेंशनिज्म में लगा हुआ है, और वही आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है चीन की गोद में जाकर के बैठ गया है और आतंकवाद का सहारा लेकर के भारत के अंदर जिस प्रकार से आतंक को फैला रहा है। तो बहुत जरूरी है भारत के लिए कि ऐसे अगर पड़ोसी हैं तो विस्तारवाद चीन का रोकना है, पाकिस्तान के आतंक का जवाब देना है, तो हम लोगों ने सक्षम होना है, सुदृढ़ होना है, सुरक्षित रहना है, और उसके लिए आत्मनिर्भर होना निहायत जरूरी है।
कल जब हम ये गौरवशाली दिन मनाएंगे, 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे कारगिल विजय दिवस की, ऐसे में आज के युवा को इस दिन को कैसे लेना चाहिए, और कल क्योंकि प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को और कारगिल पहुंचेंगे, तो उसके महत्व के बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
देखिएगा, ये एक ऐसा युद्ध था जो हर भारतीय ने अपने ड्राइंग रूम में देखा, अपने घर में बैठे बैठे देखा क्या हो रहा है, क्योंकि सब कोई पत्रकार, आप जैसे जो सारे के सारे जोशीले, चाहे वर्दी नहीं डाली होगी तो किसी भी पत्रकार में किसी सैनिक से जोश कम नहीं था, वो भी अपनी जान हथेली पे लेकर के चल रहे थे, जवानों के साथ दिखा रहे थे सबको कि किस प्रकार से क्या कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया, विक्रम बत्रा ने किस तरह कहा दिल मांगे मोर, किस प्रकार से योगेंद्र यादव चल रहा है पीवीसी ले रहा है, किस प्रकार से कालूबार में हो रहा है, किस प्रकार से टाइगर हिल को पकड़ा है, किस प्रकार से तोलोलिंग को पकड़ा है, किस तरीके से तोलोलिंग की लड़ाई ने पूरा चेहरा बदली कर दिया, भारतीय सैनिक उसके बाद पीछे हटा ही नहीं, लगातार उन्होंने देखा किस प्रकार से नवाज शरीफ दौड़ रहा है अमेरिका क्लिंटन के पास जाने के लिए कि मेरी इज्जत बचाओ। इससे पूरे भारतवर्ष में एक मुझे लगता है भारतीय होने का जो गौरव प्राप्त हुआ वो बहुत बड़ी बात है। हरेक को लगा कि भारतीय सैनिक वाकई लड़ रहा है और उनका भी जो मैं कहूँगा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत जबरदस्त था, क्योंकि एक तरीके से पूरा देश इकट्ठा हो गया, एक जो भावना होती है देशभक्ति की भावना वो पैदा हुई, वो जागृत हुई। और आप देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में उल्टा हुआ, पाकिस्तान में मुशर्रफ को सब कहने लगे कि हमारे सैनिक मर रहे हैं और आप उनको आतंकी बोल करके उनके शव को आप दफना भी नहीं रहे, हम दफना रहे थे पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को और उनको पूरा जिनीवा कन्वेंशन के तहत पूरा जो उनको मिलना चाहिए वो तो सारा का सारा हम लोगों ने किया। मुशर्रफ लेने को तैयार नहीं था क्योंकि ये तो मेरे सैनिक नहीं करते, और जब उनको दिखाया गया, जब उनके पीडब्ल्यूज पकड़े गए, जब उनको देखा तो शर्म के मारे वो माने नहीं, हम रजत जयंती मना रहे। पूरा देश में जो भावना है, मुझे लगता है कारगिल का युद्ध मीडिया ने भी एक तरीके से पूरे भारत को इकट्ठा किया, और ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय होने के नाते हम सबको गर्व है, अपने ऊपर भी और अपने सैनिकों के ऊपर भी और अपने फौज के ऊपर भी और अपने नेतृत्व के ऊपर भी।
तो कल हम इस ऐतिहासिक और भारतीय सेना के वीरता, बलिदान और पराक्रम के दिन को मनाएंगे, और पूरा देश उन शहीदों को श्रद्धांजलि देगा जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया, साथ ही उन वीर जवानों को भी नमन करेगा जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर इस युद्ध में हमें विजय दिलवाई। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने कारगिल के इस युद्ध की स्मृतियों के साथ किस तरह से भारत के लिए गौरवशाली दिन है ये कारगिल विजय दिवस, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
जय हिंद।
जय हिंद।
अभी आप सुन रहे थे वीरता, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।